ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 21 दिसंबर 2025 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य सहित परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ यर्मिया। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। उत्तरदायी अध्ययन अय्यूब। देख, ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा के गीत मनुष्य गाते आए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। पुरुष के नियन अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यशवा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यशवा से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाओ बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यशवा। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सैदक ने सुना कि यशवा ने ई को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरू और उसके राजा से किया है, और ये भी सुना कि जबून के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उसके बीच रहने लगे हैं, तब वो डर गए। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सैदक ने हबरून के राजा होहाम, यरमूत के राजा पैराम, लाकेश के राजा यापी और अजलून के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम जबून को मारें, क्योंकि उसने यशवा और इसराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए पांचों अमूरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और जबून के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया, यहाँ तक कि जबून के निवासियों ने जलजाल की छावनी में यशवा के पास यूं कहलवा भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना। और यहोवा ने यशवा से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यशवा रातों रात जलजाल से जाकर यकायक उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने इसराइलियों के सामने उनको ढारस बंधाया। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमूरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यशवा ने यहोवा से اسرائیلیوں کے دیکھتے اس پرکار کہا، ہے سوریے تو جبون پر اور ہے چندرما تو ایالوں کی ترائی کے اوپر تھما رہے۔ اور سوریے اس سمے تک تھما رہا اور چندرما اس سمے تک تھما رہا جب تک اس جاتی کے لوگوں نے اپنے شتروؤں سے پلٹا نہ لیا، نہ تو اس سے پہلے کوئی ایسا دن ہوا اور نہ اس کے بعد۔ ایوب، چپ چاپ کھڑا رہ اور ایشور کے آشچریہ کرموں کا وچار کر۔ سرو شکتی مان جو اتی سماتھین ہے اور جس کا بھید ہم نہیں پا سکتے، وہ نیائے اور پورن دھرم کو چھوڑ اتیاچار نہیں کر سکتا۔ لوکا، یہودیوں کے راجہ ہیرودیس کے سمے ابیا کے دل میں زکریا نام کا ایک یاجک تھا اور اس کی پتنی ہارون کے ونش کی تھی، جس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں پرمیشور کے سامنے دھارمی تھے اور پربھو کی ساری آگیاؤں اور ودھیوں پر نردوش چلنے والے تھے، کیونکہ الشبا بانج تھی اور وہ دونوں بوڑھے تھے۔ جب وہ اپنے دل کی پاری پر پرمیشور کے سامنے یاجک کا کام کرتے تھے تو یاجکوں کی ریتی کے انوسار اس کے نام کی چٹھی نکلی کہ پربھو کے مندر میں جا کر دھوپ جلائے۔ پربھو کا ایک سورگ دوت دھوپ کی ویدی کی دہنی اور کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر بڑا بھے چھا گیا۔ پرنتو سورگ دوت نے اس سے کہا، ہے زکریا، بھیابیت نہ ہو، کیونکہ تیری پرارتھنا سننی گئی ہے، اور تیری پتنی الشبا سے تیرے لیے ایک پتر اتپن ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے آنند اور ہرش ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کے جنم کے کارن آنندت ہوں گے، کیونکہ وہ پربھو کے سامنے مہان ہوگا اور داکھرس اور مدھیرا کبھی نہ پیے گا، اور اپنی ماتا کے گرب ہی سے پوتر آتما سے پاریپورن ہو جائے گا۔ سورگدوت نے اس کو اتر دیا کہ میں جبرائیل ہوں جو پرمیشور کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، اور میں تجھ سے باتیں کرنے اور تجھے یہ سماچار سنانے کو بھیجا گیا ہوں۔ ان دنوں کے بعد اس کی پتنی الشبا گربھوتی ہوئی اور 5 مہینے تک اپنے آپ کو یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ منوشوں میں میرا اپمان دور کرنے کے لیے پربھو نے ان دنوں میں کرپا درشٹی کر کے میرے لیے ایسا کیا ہے۔ 6ویں مہینے میں پرمیشور کی اور سے جبرائیل سورگدوت گلیل کے ناصرت نگر میں ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی یوسف نام داؤد کے گھرانے کے ایک پوش سے ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا، اور سورگدوت نے اس کے پاس بھیتر آ کر کہا، آنند اور جے تیری ہو، جس پر ایشور کا انوگرہ ہوا ہے، پربھو تیرے ساتھ ہے، اور دیکھ تو گربھوتی ہوگی اور تیرے ایک پتر اتپن ہوگا اور تو اس کا نام یشو رکھنا، اور دیکھ تیری کٹمبنی الشبا کے بھی بڑھاپے میں پتر ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو وچن پرمیشور کی اور سے ہوتا ہے وہ پربھاور ہیت نہیں ہوتا۔ بھجن سنہتا، ہے دھارمیو، یہوا کے کارن آنندت اور مگن ہو، اور ہے سب سیدھے من والو، آنند سے جے جے کار کرو۔ آموس، دیکھ پہاڑوں کا بنانے والا اور پون کا سرجانے والا اور منوشے کو اس کے من کا وچار بتانے والا اور بھور کو اندھکار کرنے والا اور جو پرتھوی کے اونچے ستھانوں پر چلنے والا ہے، اسی کا نام سیناؤں کا پرمیشور یہوا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی دوارا کرسچن سائنس کی کتاب وگیان اور سوستھ شاستروں کی کنجی کے ساتھ کے سہاس سمبندھی انش پڑھوں گا۔ وگیان اور سوستھ شاستر ہمیں سوچت کرتے ہیں کہ بھگوان سے سب کچھ ہو سکتا ہے، آتما کے لیے سبھی اچھائی سمبھو ہے۔ وگیان سبھی اچھے کو پراپت کرنے کی سمبھاونا کو پرکٹ کرتا ہے اور پرمیشور کو پہلے سے ہی پتہ لگانے کے لیے کام پر نشور سیٹ کرتا ہے۔ کرسچن سائنس مانسک کے روپ میں سبھی کارنوں اور پربھاؤں کو بتاتا ہے، شاریرک نہیں، یہ آتما اور شریر سے رہسیہ کا پردہ اٹھاتا ہے، یہ بھگوان کے لیے منوشیہ کے وگیانک سمبندھ کو درشاتا ہے، انترنیہت اسپشتتاؤں کو ہٹا دیتا ہے اور قید کیے گئے وچاروں کو مکت کرتا ہے۔ दिव्य विज्ञान में मनुष्य सहित ब्रह्मांड आध्यात्मिक समझ से अपूर्ण और शाश्वत है। रचनात्मक सिद्धांत जीवन सत्य और प्रेम ईश्वर है। ब्रह्मांड ईश्वर को दर्शाता है, लेकिन एक रचनाकार और एक रचना है। इस रचना में आध्यात्मिक विचारों और उनकी पहचानों का खुलासा होता है, जो अनंत मन में समाहित है और हमेशा के लिए परिलक्षित होते हैं। सत्य के ब्रह्मांड में सामग्री अज्ञात है। त्रुटि का कोई भी दबाव वहां प्रवेश नहीं करता है। ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है। ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए अनंत आश्चर्य की अनंत अंतरिक्ष इंगित आध्यात्मिक रूपों में उसे दर्शाते हुए ईश्वर के विचारों से अभिभूत है। मन अपने सभी स्वरूप पर सर्विच और उन सभी पर शासन करने वाला, विचारों की अपनी प्रणाली, अपने सभी विशाल निर्माण का जीवन और प्रकाश का केंद्रीय सूर्य है और मनुष्य दिव्य मन के लिए सहायक है। भावतिक और नश्वर शरीर या मन मनुष्य नहीं है। मन के बिना दुनिया ढह जाएगी, बिना बुद्धि के जो हवाओं को अपनी पकड़ में रखती है। ना तो दर्शन और ना संशयवाद विज्ञान की प्रगति में बाधा डाल सकता है, जो मन की सर्वोच्चता को प्रकट करता है। पृथ्वी की रचना करने वाले यौगिक खनिज या एकमात्र पदार्थ जो संबद्ध घातिक सामग्री एक दूसरे के साथ रखते हैं, आकाशी पिंडों की परिमाण, दूरी और क्रांतियां कोई वास्तविक महत्व नहीं रखती हैं। जब हमें यह याद आता है कि उन सभी आध्यात्मिक तत्वों को मनुष्य और ब्रह्मांड के अनुवाद द्वारा आत्मा में स्थान देना चाहिए, इसके अनुपात में मनुष्य और ब्रह्मांड शाश्वत और सामंजस्यपूर्ण पाए जाएंगे। भौतिक पदार्थ या संसारिक संरचनाओं, खगोली गणनाओं और सत्य सिद्धांतों के सभी विरोधाभास, जो कि भौतिक कानून या जीवन और बुद्धि के निवासी की परिकल्पना के आधार पर अंततः गायब हो जाएंगे, आत्मा के अंतकालन में निगल लिए जाएंगे। पृथ्वी की गति और स्थिति केवल मन से ही बनी रहती है, लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है। ध्रुव को सुई की ओर इशारा करना इस सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मन के आकर्षण का प्रतीक है। क्योंकि परमेश्वर ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, ग्रहों का उसके निर्माता से अधिक मनुष्य पर कोई अधिकार नहीं है। परंतु मनुष्य, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करता है, सारी पृथ्वी और उसकी सेना पर प्रभुता करता है। पौधा बीज या मिट्टी के कारण नहीं बढ़ता, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि विकास मन का शाश्वत आदेश है। नश्वर विचार जमीन में गिरता है, लेकिन अमर सर्जन आत्मिक विचार ऊपर से आता है, नीचे से नहीं। क्योंकि मन ही सब कुछ बनाता है तथा निमन शक्ति द्वारा बनाने के लिए कुछ भी शीश नहीं रहता। आत्मा मन के विज्ञान के माध्यम से कार्य करती है, मनुष्य को कभी भी जमीन जोतने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि उसे मिट्टी से श्रेष्ठ बनाती है। इसका ज्ञान मनुष्य को मिट्टी, पृथ्वी और उसके वातावरण से ऊपर उठाकर सुचेतन आध्यात्मिक सिद्धभाव और शाश्वत अस्तित्व की ओर ले जाता है। यदि हम एक साकार व्यक्ति के रूप में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ये हमें उन मानवीय संदेहों और भावों को त्यागने से रोक देगा जो इस तरह के विश्वास में शामिल होते हैं, और इसलिए हम अनंत निराकार प्रेम द्वारा किए गए चमत्कारों को नहीं समझ सकते, जिसके लिए सभी चीजें संभव हैं। ये चमत्कार किसी विकार का परिचय नहीं देता है, लेकिन मौलिक आदेश को प्रकट करता है। भगवान के अपरिवर्तनीय कानून के विज्ञान की स्थापना, आध्यात्मिक विकास अकेले ईश्वरीय शक्ति के व्यायाम के योग्य है। मिस्र में यमन ही था जिसने इसराइलियों को विपत्तियों पर विश्वास करने से बचाया था। जंगल में चट्टान से धाराएं बहती थीं और मन आसमान से गिरती थी। इसराइलियों ने ब्राज़ीन सांप को देखा और सीधे विश्वास किया कि वो वेपर के जहरीले डंक से ठीक हो गए हैं। राष्ट्रीय समृद्धि में चमत्कारों ने इब्रानियों की सफलताओं में भाग लिया, लेकिन जब वो सच्चे विचार से विदा हुए तो उनका विध्वंस शुरू हो गया। यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्रों के बीच बंधी अवस्था में भी ईश्वरीय सिद्धांत ने अग्नि भट्टी में और राजाओं के महलों में परमेश्वर के लोगों के लिए चमत्कार किए। तथाकथित गैसों और बल दिव्य मन की आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतिरूप हैं, जिनके सामर्थ्य सत्य हैं, जिनका आकर्षण प्रेम है, जिनका आसन जन और समान जैसे जीवन है, होने के तत्वों को नष्ट कर देते हैं। विद्योत भावतिकता का वो तीव्र अधिशेष है जो आध्यात्मिक या सत्य के वास्तविक सार को उद्घाटित करता है। महान अंतर ये है कि बिजली बुद्धिमान नहीं है, जबकि आध्यात्मिक सत्य मन है। भूकंप, हवा, लहर, बिजली, अग्नि, सबसे अच्छा गति में व्यक्त नश्वर मन का कोई वाष्पी भूत रूष नहीं है, और ये तथाकथित मन सब नष्ट है। बुराई की अभिव्यक्ति जो ईश्वरीय न्याय का प्रतिकार कराती है, शास्त्रों में कहा गया है प्रभु का क्रोध, वास्तव में वो त्रुटि या पदार्थ के आत्म विनाश को दर्शाते हैं और पदार्थ के विपरीत और आत्मा के सत्यात्व और ताकत को इंगित करते हैं। क्रिश्चियन साइंस सत्य और उसके वर्चस्व सार्वभौमिक सिद्ध भाव ईश्वर की पवित्रता, अच्छाई और बुराई को प्रकाश में लाता है। कभी कभी हम सीखेंगे कि आत्मा महान वास्तुकार ने विज्ञान में पुरुषों और महिलाओं को कैसे बनाया है। क्रिश्चियन साइंस अभियोग प्रस्तुत करता है, अभिवृद्धि नहीं। ये अणु से मन तक कोई भौतिक विकास नहीं दर्शाता, लेकिन मनुष्य और ब्रह्मांड के लिए दिव्य मन का एक संस्कार है। जो कुछ भी बना है वो परमेश्वर का कार्य है और सब कुछ अच्छा है। मनुष्य की सामर्थ्यता और अमरता बरकरार है। हमें इस विपरीत धारणा से दूर देखना चाहिए कि मनुष्य भौतिक रूप से बनाया गया है, और हमारी निगाहें सृष्टि के आध्यात्मिक रिकॉर्ड की ओर मुड़े, जिसे समझ और दिल पर हीरे की नोक से और एक स्वर्गदूत की कलम पर उकीरा जाना चाहिए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।